नमस्कार, आप सुन रहे हैं जनसत्ता पर कारोबार जगत की बड़ी खबरें। वित्तीय सेवा सचिव विवेक जोशी ने कहा है कि विदेशी पूंजी के प्रवाह संबंधी मानदंडों को अधिक उदार बनाने से बीमा क्षेत्र में पिछले 9 साल में करीब 54,000 करोड़ रुपए का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आया है। जोशी ने पीटीआई भाषा के साथ बातचीत में कहा कि सरकार ने बीमा क्षेत्र में एफडीआई की सीमा को 26% से बढ़ाकर वर्ष 2015 में 49% और फिर 2021 में संशोधित कर 74% कर दिया था। उन्होंने कहा कि सरकार ने बीमा मध्यस्थ कंपनियों के लिए स्वीकृत एफडीआई सीमा को वर्ष 2019 में बढ़ाकर 100% कर दिया था। उन्होंने कहा कि सरकार के इन कदमों से दिसंबर 2014 से जनवरी 2024 के बीच बीमा कंपनियों में कुल 53,900 करोड़ रुपए का एफडीआई प्राप्त हुआ। जोशी ने कहा कि इस अवधि में जनवरी 2024 तक बीमा क्षेत्र से जुड़ी कंपनियों की संख्या 53 से बढ़कर 70 हो गई। उन्होंने कहा कि बीमा उत्पादों की पहुंच वित्त वर्ष 2013-14 में 3.9% थी, जो बढ़कर वित्त वर्ष 2022-23 में 4% हो गई। वहीं बीमा घनत्व 2013-14 के $52 से बढ़कर 2022-23 में $92 हो गया। बीमा पहुंच को सकल घरेलू उत्पाद में बीमा प्रीमियम के प्रतिशत के रूप में मापा जाता है, जबकि बीमा घनत्व की गणना जनसंख्या के अनुपात में बीमा प्रीमियम के रूप में की जाती है। बीमा कंपनियों के प्रबंधन अधीन परिसंपत्तियां 2013-14 में 21.07 लाख करोड़ रुपये थी, जो लगभग 3 गुना होकर 60.04 लाख करोड़ रुपये हो गई। वहीं कुल बीमा प्रीमियम मार्च 2014 के 3.94 लाख करोड़ रुपए से दोगुना से अधिक होकर 10.4 लाख करोड़ रुपए हो गया। अगस्त 2000 में बीमा क्षेत्र को निजी खिलाड़ियों के लिए खोला गया था। वहीं विदेशी कंपनियों को 26% तक स्वामित्व की अनुमति दी गई थी। उस समय से कई विदेशी कंपनियों ने बीमा क्षेत्र में निवेश किया है। जोमैटो के मुख्य कार्यपालक अधिकारी दीपिंदर गोयल ने सोमवार को उद्यमियों को सलाह दी कि अपने सपनों की कंपनी बनाने के लिए पैसों की इच्छा नहीं, बल्कि जुनून के साथ आगे बढ़ने की जरूरत है। उन्होंने साथ ही आगाह किया कि सिर्फ पैसा कमाने की एकमात्र इच्छा वाला उद्यम सफल नहीं होता है और वो बुरे प्रशासन के जाल में फंस सकता है। गोयल ने यहाँ स्टार्टअप महाकुंभ कार्यक्रम में बताया कि कैसे उनकी कंपनी आगे रहने के लिए हमेशा पागलपन की तरह काम करना पसंद करती है। उन्होंने जोर देकर कहा कि किसी भी समय आत्मसंतुष्टि नहीं आनी चाहिए। उन्होंने एक खचाखच भरे हॉल में श्रोताओं से कहा, मैं बहुत सारे लोगों को बहुत सारी कंपनियां शुरू करते हुए देखता हूं और मैं उनसे पूछता हूं कि आपने ये कंपनी शुरू क्यों की। उनका जवाब रहता है, मैं बहुत अधिक पैसा कमाना चाहता हूं। मुझे नहीं लगता कि इससे बात बनती है, क्योंकि इससे खराब प्रशासन को बढ़ावा मिलता है। ये वो मकसद नहीं है जिसके लिए आपको एक कंपनी शुरू करनी चाहिए। उन्होंने महत्वाकांक्षी और नए उद्यमियों को सलाह दी कि आपको अपने काम के लिए हद से ज़्यादा जुनूनी होना चाहिए। आपको उसके लिए अपना जीवन जोखिम में डालने के लिए तैयार रहना चाहिए, तभी आप अपने सपनों की कंपनी बनाने में सक्षम होंगे। उन्होंने इन्फोएज के संस्थापक संजीव बिखचंदानी के साथ एक तीखी बातचीत में कहा, मेरी यही सलाह है, इसे जुनून के साथ करें, पैसे के लिए ना करें। दूसरी ओर बिखचंदानी ने उद्यमियों को किफ़ायती और व्यवहारिक होने तथा हमेशा बाजार और उपभोक्ताओं से जुड़े रहने की सलाह दी। गोयल ने इस बात पर जोर दिया कि व्यवसायों के लिए लगातार नवाचार ज़रूरी है, क्योंकि कोई भी कारोबारी मॉडल नवाचार के बिना 1 या 2 दशक से अधिक समय तक जीवित नहीं रह सकता है। उन्होंने कहा कि कोई व्यक्ति अगर आरामदायक जीवन और मस्ती के लिए एक कंपनी शुरू करना चाहता है तो वो गलत विकल्प चुन रहा है। उन्होंने कहा, सफल होने के लिए आपको तनाव से निपटना सीखना होगा। हारने का एकमात्र तरीका हार मानना है। यदि आप जीवित रह सकते हैं तो आप जीतेंगे। एयर इंडिया की सहायक कंपनी एयर इंडिया एक्सप्रेस अप्रैल में कोलकाता से इम्फाल और कोच्चि के लिए सीधी उड़ानें शुरू करेगी। एयरलाइन के एक अधिकारी ने कहा, ये उड़ानें इम्फाल के लिए प्रतिदिन और कोच्चि के लिए सप्ताह में 6 दिन संचालित होंगी। कोलकाता से इम्फाल के लिए विमान सुबह 7 बजे उड़ान भरेगा और सुबह 8:05 पर मणिपुर की राजधानी पहुँचेगा। उन्होंने कहा कि वापसी की उड़ान सुबह 8:35 पर रवाना होगी और 10:20 तक कोलकाता पहुंचेगी। कोलकाता से कोच्चि के लिए विमान सुबह 11:25 पर उड़ान भरेगा और वापसी की उड़ान दोपहर 3:05 पर रवाना होगी। सूत्रों ने कहा कि मार्ग एकीकरण के जरिए एयरलाइन विभिन्न घरेलू मार्गों पर अधिक उड़ानों का संचालन करेगी। चीन के विनिर्माण और निवेश में 2024 के पहले 2 महीनों में सुधार हुआ है, जबकि रियल एस्टेट क्षेत्र अभी भी कमजोर बना हुआ है। चीन के राष्ट्रीय सांख्यिकी ब्यूरो ने सोमवार को एक रिपोर्ट में ये जानकारी दी। रिपोर्ट में कहा गया कि जनवरी फरवरी में औद्योगिक उत्पादन सालाना आधार पर 7% बढ़ा। ये आंकड़ा विश्लेषकों के अनुमान से बेहतर है। इस दौरान कारखानों और उपकरणों पर खर्च 4.2% बढ़ गया। दूसरी ओर जनवरी फरवरी में रियल एस्टेट क्षेत्र सुस्त रहा और इसमें पिछले साल की समान अवधि के मुकाबले 9% की गिरावट हुई। राष्ट्रीय सांख्यिकी ब्यूरो के प्रवक्ता लियू एहुआ ने संवाददाताओं से कहा कि संपत्ति बाजार अभी भी समायोजन और बदलाव के दौर से गुजर रहा है, लेकिन इस महीने की शुरुआत में चीन के वार्षिक विधायी सत्र में घोषित नीतियों से स्थिर और स्वस्थ वृद्धि को बढ़ावा मिलेगा। इन नीतियों में डेवलपर्स के लिए वित्त पोषण बढ़ाने और अधिक किफायती आवास बनाने की बात शामिल है। विस्तार से खबरें पढ़ने के लिए आएं जनसत्ता.com पर। नमस्कार।